यहां एक थोड़ी सी बात समझ लेंगे थोड़ा सा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, जब कंस ने वसुदेव जी को कहा कि तुम अपना पुत्र वापस लेके चले जाओ, वो पुत्र को लेकर के वापस जाते हैं। कितने नंबर का श्लोक है? 61। तो क्या करते हैं वो, समझने जैसी बात है। तथा इति सुतम आदाय यया आनक दुंदुवी नाभ्यनंदत तद्वाक्यम असत अभिजितात्मना। वो पुत्र को वापस लेकर के जाते हैं, लेकिन पुत्र को वापस लेके जाते समय उनके चित्त में प्रसन्नता नहीं हुई। लिखा है ना, नाभ्यनंदता, उसने उस घटना का अभिनंदन नहीं किया। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि ज्ञान जो है वो व्यक्ति के अधीन नहीं है, वस्तु के अधीन है। वस्तु जैसे आपकी आंख है, आपकी पत्नी है, तो आपकी अपनी पत्नी को आप बोल सकते हो, कोई आया बाहर गेट पे तो बोल दे, उसको बोल दो घर में नहीं है, तो वो बोल देगी कि घर में नहीं है, क्योंकि वो आपके अधीन है। लेकिन आपकी जो आंख है, सामने लाल रंग पड़ा हुआ है, उस आंख से आप प्रार्थना करो कि तुम ऐसा करो कि लाल ज्ञान नहीं करो, पीले ज्ञान करो, आप
वो नहीं होगा।
पीला बोलो कि पीला है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। आंख बोलेगी मेरे बस की बात नहीं है।
अच्छा,
क्योंकि ज्ञान कैसा है?
वस्तु
के अधीन है। जो कल श्लोक बताया था, वसुदेव के कहने पर कंस मान जाता है, निवृत्त हो जाता है, बहुत बड़े पाप कर्म से वह निवृत्त हो जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण वसुदेव तो है ही, लेकिन कंस का ज्ञान कहता है क्या, ये सबसे बड़ा साधु है, साधु है ये, क्योंकि ये साधुता वसुदेव के अंदर है। तो कंस कितना भी क्रूर है, लेकिन सामने वाले व्यक्ति के प्रति वो अपना दृष्टिकोण बदल नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान किसके अधीन है? बस उसकी बुद्धि कह रही है आदमी साधु है, ये अपने जीवन में सब कुछ सहन कर सकता है, और इसमें साधुता दिखी, और दूसरा क्या दिखा? विद्वत्ता दिखी। तो विद्वत्ता का क्या अर्थ बताया था कल आपको? किम अपेक्षितम विदुषाम। विद्वान वो है जो किसी से कोई अपेक्षा न रखता हो। तो उन्होंने उस कंस को उनमें तीन चीजें दिखाई दे रही हैं, साधुता, विद्वत्ता और धृतात्मता। तो धृतात्मना का अर्थ कर दिया वहां पे जितेंद्रिय। तो जो जितेंद्रिय व्यक्ति है वो अपने जीवन में सब कुछ त्याग कर सकता है। यदि भर्तृहरि ने इतना बड़ा राजपाट त्यागा, बुद्ध ने वो राज्य त्यागा जिस राज्य के लिए बुद्ध का पिता कहता है कि तुम संभालो, कोई उसका प्रतिद्वंदी नहीं। आदमी पद पाने के लिए दूसरे की टांग खींचता है, प्रतिष्ठा पाने के, क्योंकि इससे ये पता चलता है कि आदमी जीता कहां है। वो इंद्रियों में जीता है कि मन में जीता है, कहां जीता है? तो ज्ञान वस्तु के अधीन होने के कारण वसुदेव को कंस के अंदर क्या दिखता है? कदर्या। अब इस श्लोक के अंदर जो जरा समझने जैसी बात बता रहे हैं, नाभ्यनंदत तद वाक्यम असतो अभिजितात्मनाम। जिस आदमी का अपनी इंद्रियों के ऊपर और अपने मन के ऊपर बस नहीं है, वो आदमी कभी भी अपनी बात से पलट जाता है। अपनी बात पे स्थिर कौन रहता है? जिसका मन और इंद्रियों के ऊपर बस रहे। कहते हैं रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाए पर, ये कौन बोलता है? ये दशरथ बोलते हैं। दशरथ शब्द अर्थ तो आप लोग 50 बार सुन चुके हैं। जिन्होंने अपनी 5 इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय और 5 कर्म इंद्रियों को अपना रथ बना दिया है, मैंने अपने बस में कर दिया। देखो मंजिल पर वही व्यक्ति पहुंचता है जिस व्यक्ति का अपने साधन के ऊपर नियंत्रण होता है। जिस व्यक्ति का अपने साधनों के ऊपर नियंत्रण नहीं है फिर वो व्यक्ति कभी अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। तो साधनों के ऊपर बस होना चाहिए। इसलिए मैंने कभी आपको छोटी सी बात कई बार बताता हूं कि बुद्ध की पत्नी बुद्ध को इतना कहती है, इतना सब कुछ कहती है, और जब बुद्ध भिक्षा मांगते हैं तो भिक्षा में राहुल को दे देती है। ये ज्ञान है, ये वस्तु के अधीन है। वस्तु के अधीन होने के कारण इसलिए यहां पर बता रहे हैं उसके कहने पर वसुदेव जी को प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि उसको पता है कि इस आदमी का अपने मन और अपनी इंद्रियों के ऊपर विश्वास नहीं है, नियंत्रण नहीं है। इसलिए कभी भी ये आदमी अपनी बात से पलट जाता। अब ये व्यवहार में भी हम देखते हैं कि जिस आदमी के मन और वाणी पे नियंत्रण नहीं होता वो कभी भी अपनी बात पे पलट जाता है। और आप लोग भी व्यवहार में जो आदमी अपनी बात से पलट जाता है उसके ऊपर विश्वास नहीं करते, करते हैं जो बात से पलट जाए उसका क्या विश्वास करना है? इसलिए बता रहे हैं। इसलिए यहां बड़ा अच्छी ढंग से बताते हैं सुखदेव जी महाराज कि वसुदेव जी महाराज को प्रसन्नता नहीं हुई, क्योंकि उनको कंस के अंदर अजितेंद्रियता और कदर्यता मैंने क्रूरता दिखाई दे रही है। चलो इतना प्रसंग यहां पे खत्म हो गया। 62 नंबर के श्लोक में क्या कहते हैं? इतनी बात होने के बाद नंदाद्य ये ब्रजे गोपा याश्चामी साम च योषिता कृष्णयो वसुदेवाद्य देवक्याद्य यदुस्त्रयः। ब्रज में जो नंदादि गोप हैं, ब्रजे ये नंदाद्य गोपाः, ब्रज में जो नंदादि गोप हैं अमीसाम योषिताः, और इनकी जो स्त्रियां हैं ये सब क्या हैं? वृष्णि वंश वाले जितने हैं, ये जितने सब कुछ हैं ये कौन हैं? तो बता रहे हैं सर्वे वै देवता प्राय उभयोरपि भारत ज्ञातयुः बंधु सुहृदो ये च कंसम अनुव्रता। ये जितने भी कंस के अनुज्ञाती हैं, रिश्तेदार सब हैं, वसुदेव आदि जितने हैं, ये सब देवता लोग हैं। देखिए इसका नाम मर्त्य लोक है। कभी महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है ना, मनुष्य वो कहते हैं लोहे का है, और देवता जो है वो चांदी के बने हुए हैं, चांदी के समान हैं वो। तो लोहा ज्यादा कीमती होता है कि चांदी ज्यादा कीमती होती है? चांदी से। लेकिन बोलते हैं यदि पारस मणि का संयोग हो जाए तो लोहा सोना हो जाता है, और फिर सोने की कीमत कितनी ज्यादा है चांदी से ये आप जानते हो। लेकिन यदि पारस मणि का संयोग न हो और पानी का संयोग हो जाए तो लोहे में जंग लग जाता है, और वो जंग लोहे को खा जाता है। चांदी काली हो जाती है लेकिन फिर साफ करो तो फिर एकदम चमकने लगती है, लेकिन लोहे में जंग लग जाते हैं धीरे धीरे। भर्तृहरि ने लिखा है भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। मनुष्य ये सोचता है कि हम भोगों को भोग रहे हैं, लेकिन प्रायः मनुष्य भोगों को नहीं भोगता, भोग मनुष्य को भोग देते हैं। मैं कभी आपको बताता हूं, आजकल बच्चे बहुत इंटरनेट देखते हैं, टीवी देखते हैं, तो वो मोबाइल पे चश्मा लगता है कि बच्चों की आंख पे चश्मा लगता है? तो वो फोन ने तुम्हारे को खा लिया कि तुमने फोन को खा लिया? शास्त्रों में विषय के सेवन का विरोध नहीं किया गया, लेकिन विषयों का सेवन व्यक्ति को एक औषधि के समान करना चाहिए। सेवन का निषेध नहीं है। जो भी सृष्टि में चीज बनी है वो मन प्राणियों के उपभोग के लिए ही चीज बनी हुई है, ये निश्चय समझ लीजिए आप। इसलिए बता रहे हैं ये जितने हैं सब सर्वे वही देवता प्रायः, वो देवता बन गए, प्रायः देवता हैं। उभयो रवि भारत, ये जो है ना, ये वहां पर नारद जी महाराज आ गए हैं, का किसके पास? देखो साधुता जीवन की सबसे बड़ी है। नारद शब्द का अर्थ आप लोगों ने सुना होगा कई बार, कभी कभी तो कोई कोई ऐसा कर देते हैं जिसका किया हुआ कभी रद्द न हो उसको बोलते हैं नारद, ऐसा अर्थ नहीं है शास्त्र के हिसाब से। कहते हैं नर नारायण संबंधी ज्ञानम नारम, नर को नर का नारायण के संबंध में जो ज्ञान है उस ज्ञान का नाम है नार, और उस ज्ञान को जो देता है उसका नाम है नारद। तो नारद शब्द का सीधा सीधा अर्थ यदि समझ लो आप, नर को नारायण के संबंध में जो ज्ञान दे उसका नाम क्या है? नारद है। तो नारायण से संबंध कराने वाला व्यक्ति, नर का नारायण से संबंध कराने वाला व्यक्ति, जब आपको आपकी बुद्धि में किसी चीज का महात्म्य बैठता है, महत्व बैठता है, तो उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न करते हैं। जब तक आपकी बुद्धि में उसका महत्व नहीं बैठता तब तक उसको प्राप्त करने के लिए आप प्रयत्न नहीं करते। तो नारद जी महाराज की खासियत यह है कि वो मनुष्य की बुद्धि में नारायण के महत्व को बिठा देते हैं, और ये बुद्धि जिस चीज के महात्म्य को स्वीकार कर लेती है तो सारा प्रयत्न सारा पुरुषार्थ उस चीज को प्राप्त करने के लिए करती है। यदि असमर्थ है तो दुखी होकर के बैठ जाता है, यदि सामर्थ्यवान है तो फिर देखो एक बात पहले निश्चय करके रख लो, इस जगत में ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति एक बात, और अहम आत्मा गूढ़ा केश सर्वभूता सह स्थिता, परमात्मा सबकी आत्मा है, अहम आत्मा गूढ़ा केश। आचार्य शंकर ने लिखा है भगवद गीता में अर्जुनम निमित्ती कृत्य अह भगवान, भगवान अर्जुन को निमित्त बना करके और प्रत्येक प्राणी के लिए यह संबोधन कर रहे हैं। अर्जुन जो है वो जीव का प्रतिनिधित्व करता है, तो आचार्य लिखते हैं अर्जुनम निमित्ती कृत्य आ भगवान, अर्जुन को निमित्त बना करके भगवान कहते हैं, अर्जुन को निमित्त बना करके कहते हैं। तो किसी में हमारा अधिकार है या नहीं है, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति में हमारा स्वयं सिद्ध अधिकार है। जो बोलता है परमात्मा की प्राप्ति में तुम्हारा अधिकार नहीं है, उससे बड़ा नासमझ व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। अरे भाई, आत्मा तो नित्य प्राप्त है, जो चीज नित्य प्राप्त है उसकी प्राप्ति में व्यक्ति का अधिकार कैसे नहीं होगा। अब आपको अपने पाने में अधिकार है कि नहीं है? लेकिन अपने पाने का अर्थ शास्त्रों में है अपने को जानना, अपने को जानना। और जानने से किसको पाता है आदमी? जानने से किसको पाता है मालूम है? इतना सुनते हैं आप लोग, जानने से, हाँ, जानने से उसको पाता है जो प्राप्त है पहले से, करने से उसको पाया जाता है जो प्राप्त नहीं है। अप्राप्त की प्राप्ति करने से होती है और प्राप्त की प्राप्ति जानने से होती है। कितनी बार महात्मा लोग दृष्टांत देते हैं कि तुम्हारे हाथ में कुंडल है और वैसे उस कुंडल को ऊपर चढ़ा दिया, गंगा जी में स्नान करने के लिए गए और पता लगा कि मेरा कुंडल खो गया, और वो बड़ा दुखी हो गया, बड़ा परेशान हो गया। और फिर बाद में कपड़े को जब ऐसा किया तो देखा कुंडल हाथ में लग गया, तो बड़ी खुशी हो गई। तो जानने से उसकी प्राप्ति होती है जो नित्य प्राप्त है, और करने से अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति होती है। ये ध्यान रखिएगा आप, इसलिए देख लो। उन्हों कंस के पास में वो आए, कौन? नारद जी महाराज। और यहां लिखते हैं भागवत में, कई लोग कभी कभी बड़ी बड़ी कहानी बनाते हैं कि ऐसा बताया 8 गर्भ है और ऐसा, कोई भागवत में इस चीज का कहीं जिक्र नहीं। मूल भागवत में सब प्रक्षिप्त है, कहीं मूल भागवत के श्लोकों में जंग 3 ही श्लोकों में ये बात बता दी, 2 श्लोकों में तो ये बात बताया। प्राय देवता है, जितने हैं वो सब देवता हैं। ये तत् कंसाय भगवान ससंस अवियेत्य नारद भूमि भाराय माणानाम दैत्यानां च बद उद्यमम। कंस के पास में केवल इतना ही उन्होंने कहा हैं भगवान। यहां पर एक बात देख लीजिए, जो बड़े लोग होते हैं देखो तो वो हमेशा दूसरे को मान देते हैं। मैं आपको हमेशा बताता हूं, विष्णु सहस्र नाम में भीष्म पिता मां जब सरसैया पर लेटे हुए हैं तो भगवान की जब स्तुति करते हैं और भीष्म पिता मां की बुद्धि शुद्ध है और युधिष्ठिर जी महाराज पास में बैठे हैं, युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक हैं और भीष्म पिता मां अथा पुरुषार्थ के प्रतीक हैं। अथा पुरुषार्थ करने के बाद व्यक्ति जो ईश्वर के महत्व को समझता है उस महत्व को कोई तर्क से काट नहीं सकता है। जो बड़े लोग होते हैं, बड़ापन जीवन में कैसे आता है? यदि आप अपने जीवन में बड़ापन लाना चाहते हो, श्रेष्ठपन लाना चाहते हो, तो दूसरे से मान की अपेक्षा मत करो। विष्णु सहस्र नाम कहता है अमानी ही मानदो मान्या, मान की अपेक्षा नहीं करो। सुखदेव जी ने कोई मान की अपेक्षा नहीं करी जब वहां पहुंचते हैं, क्योंकि वो मैंने बताया भागवत के अंदर विद्वान कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं रखता, वही वैदुष्य है उसका। क्योंकि शास्त्रों में लिखा है विद्या धनम सर्व धनम प्रदानम स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान पूज्यते सर्वत्र। सब लोगों को भूल जाते हैं, लेकिन स्वामी विवेकानंद जब वहां गए, हाँ वहां उन्होंने जो कहा वो उनका आत्मसात किया हुआ था। राजा की पूजा अपने देश में होती है लेकिन विद्वान की पूजा सर्वत्र होती है। वहां पर बताते हैं नारद जी ने इतना ही उनको कहा कि भाई देख, ये जितने एतद भूमे भाराय माणानाम, ये जितने सब हैं ये भूमि के सब भार बन गए। बड़े बड़े राजा महाराजा जो है ना, बहुत भूमि के भार बन गए। दैत्यानाम बद उद्यमचा, और ये जितने देवता जो जो आपको यदुवंशी दिखाई दे रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है? नहीं, वो तो देवता तो हैं, दैत्याना ये जो उद्यम लग रहे हैं, बोलते हैं ना सरकार उद्यम लगा रही है, तो ये जितना उद्यम हो रहा है ये दैत्यों के बद के लिए सारा उद्यम हो रहा है। ये किसको बताया? कंस को बताया। इतना जब कंस को बताया और बताने के बाद नारद जी चले गए, ज्यादा देर रुके नहीं। हाँ, दुष्ट के पास में ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। हाँ, कब मन की वृत्ति बदल जाए कुछ पता नहीं है उसका। हाँ, इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने तो ऐसा लिखा है कि हे परमात्मा, कुछ समय के लिए नरक में डाल देना, लेकिन नीच संग न देहु विधाता, क्योंकि नरक में जब हम जाते हैं तो हमारे पाप कटते हैं, और जब किसी नीच व्यक्ति के साथ में बैठते हैं तो नए नए पाप होते हैं, बैठते हैं ना। मैंने आपको बताया कि यदि महाभारत में कर्ण जैसा चरित्रवान कोई नहीं, कर्ण जैसा दानी कोई नहीं, और कर्ण जैसी सेवा करने वाला कोई नहीं। महाराज, परशुराम जी महाराज के पांव, उसके पांव को कीड़ा काट दिया और उसने अपनी गोद में परशुराम का सिर रखा हुआ है और सोचता है गुरुजी की नींद नहीं खुल जाए, इसके लिए वो अपना पांव नहीं हिलाता, अंदर से खून की धार बहती है, इतनी सेवा। लेकिन ये सब कोई गुण काम नहीं आया वो उसका। मैंने भी बहुत ऐसा महाभारत एक बारी मैंने पढ़ा है, लेकिन जब यहां प्रेमपुरी में किया ना, उस समय प्रत्येक अध्याय करने का जब मौका मिला तो वहां पर मुझे उत्तर मिला। वहां पे ये कर्ण के प्रति ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कर्ण वहां उत्तर दिया बड़ा सुंदर कि कर्ण कोई भी कर्म करता था, उस जैसे एक कर्म के पूर्व में संकल्प होता है। जब आप कर्म करते हैं, कुछ लौकिक चाहे वैदिक कर्म करते हैं, तो वैदिक कर्म करते समय कर्म के पूर्व में आप क्या करते हैं? संकल्प करते हैं। इसी प्रकार कर्ण कोई भी कर्म करता था, उसके मूल में अर्जुन के प्रति द्वेष होता था। तो द्वेष पूर्वक किया गया सत्कर्म भी मनुष्य के विनाश का कारण बन जाता है। द्वेष पूर्वक सत्कर्म भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी सेवा की। और जब वो श्राप दिया ना, तो वहां एक बड़ा सुंदर वाक्य महाभारत में मिलता है, क्योंकि महाभारत भी करना नहीं चाहिए लेकिन पढ़ना जरूर चाहिए। बड़ा सुंदर उन्होंने कहा कि वो कोई ब्राह्मण श्राप नहीं देता, परशुराम श्राप नहीं देता, उसके मुंह से कर्ण का दुर्भाग्य बोलता है। और दुर्भाग्य तब बोलता है जब आप किसी के प्रति भयंकर द्वेष की भावना रखते हो। तो जिसके प्रति भी आप द्वेष रखते हो, उसको आप अपने हृदय में जगह देते हो। एक बार मैं पार्ले में कथा कर रहा था, बहुत पुरानी बात हो गई, वहां लक्ष्मीनारायण मंदिर था एक, वहां कथा होती थी, कथा करता था। एक भगत वहां पर ही आया, बहुत वृद्ध था। उसने मेरे से कहा, महाराज जी एक बात बताओ, अभी तक दुनिया में सबसे अच्छी मृत्यु किसकी हुई? बड़ा प्रेम से बोला उसने। जब आदमी असमर्थ होता है तो सत्य के बारे में सोचने लगता है। मैंने कहा, भैया अभी तक मेरी दृष्टि में सबसे अच्छी मौत कंस की है। जो भगवान को चाहता नहीं है, धक्का देता है, और फिर भी भगवान उसकी छाती में, ऐसे तो किसी की छाती में बैठे नहीं है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वह व्यक्ति जो है ना, प्रतिपल ऐसा कहते हैं, हवाओं की आहट में भी उसको कृष्ण दिखाई देता था। घंटी बजती थी तो उसको कृष्ण के आने की आवाज सुनाई देती थी। उसका सारा जीवन कृष्णमय हो गया था भय के कारण। इसलिए मृत्यु काल में बड़े बड़े योगी ध्यान लगाते हैं लेकिन चित्त में कोई ऐसी वृत्ति आती है कि परमात्मा की वृत्ति हट जाती है और संसार की वृत्ति आ जाती है। लेकिन ये तो भगवान को हटा रहा है और जबरदस्ती छाती में, कौन त्रिलोकाधिपति? योग समाधि ध्यान करने के बाद जो पकड़ में नहीं आता और वो साक्षात जिस विग्रह को लेकर के आया है उस विग्रह को लेकर के उसकी छाती पर बैठा हुआ है। कंस नारद जी के चले जाने के बाद भागवत क्या कह रही है जरा सुन लीजिए आप। ऋषेर विनिर्गमे कंसो यदुन्मत्वा सुरानिति देवक्या गर्भ संभूतम विष्णुम च स्वबदम प्रति। अब उसके मन में एक बात आ गई, ऋषिर विनिर्गमे, ऋषि के चले जाने के बाद, ऋषि मैंने नारद जी के चले जाने के बाद, यदुन सुरान मत्वा च, अब उसकी बुद्धि में यह निश्चय हो गया कि यदुवंशी कौन है? देवता हैं। अभी तक उसके मन में यह निश्चय नहीं था, इसलिए अब एक बात आप समझ लीजिए कि नारद जी के वचनों के प्रति उसको विश्वास है। ये बोध उसको किसने कराया? अभी तक उसको अपने सगे संबंधी वो समझ रहा था, दुश्मन समझ रहा था, लेकिन नारद जी महाराज के एकमात्र कहने मात्र से। इसीलिए ऋषि जो होता है वो आप्त पुरुष होता है, आप्त पुरुष है, उसके देवता भी, उसके जो देवता आदर देते हैं ऋषियों को वो भी उनकी बात पर विश्वास करते हैं और जो आदर नहीं देते वो भी उनकी बात पे, उसको बोलते हैं संस्कृत में आप्त पुरुष। जगत में आप्त पुरुष, आप्त बोलते हैं प्रमाणिक। युधिष्ठिर को आप्त पुरुष क्यों बोलते हैं? क्योंकि दुर्योधन उसका इतना विरोधी होने के बाद भी दुर्योधन को जो उपाय उन्होंने बताया, दुर्योधन ने वो उपाय किया क्योंकि दुर्योधन को भी उसके ऊपर विश्वास है कि ये आदमी गलत रास्ता नहीं बताएगा। अच्छा, देवक्या गर्व संभूतम विष्णुम च स्वबदम प्रति। अब फिर उसने समझ लिया कि देवकी के गर्भ से मेरे को बल करने वाला उत्पन्न होगा, इतना उसने निश्चय कर लिया। किसने? कंस ने। चलो, इतना ही लिखा है भागवत में और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके बाद क्या करता है वो? देव किम वसुदेवम च निगृह निगड़े गृहे जातम जात महन पुत्रम तयोर अंजन संकया। फिर जब अभी देख लीजिए आप, ये हो गया व्यक्ति का व्यक्तित्व। कदरिया नाम बोल दिया ना, इसको बोलते कदरिया, नीच व्यक्ति। नीच व्यक्ति क्या? पहले उसने वसुदेव और देवकी को छोड़ दिया था, अब उसके बाद क्या क्या? देवकिम वसुदेवम च, वसुदेव और देवकी को निगड़ई, निगड़ई बोलते हैं संस्कृत में बेड़ी, होती है ना बेड़ी बोलते हैं बेड़ी, उस बेड़ी में जकड़ करके उन्होंने गृहे निगृह और घर के अंदर उनको कैद कर दिया। कोई घर को ही जेल खाना हो, यहां गृह शब्द का प्रयोग किया, घर के अंदर ही उनको कैद कर दिया उन्होंने। तयो अजनह संकया, बता दिया तयो अजनह संकया। जो पर देखो, कंस भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, उसको भी परमात्मा का बोध है कुछ। अजनह जो जन्मता नहीं है वो इसके माध्यम से जन्मेगा। अजनह का अर्थ होता है जो जन्मता नहीं है, वो कौन हो गया? विष्णु। वो इसके माध्यम से जन्मेगा इसी, और फिर वो मेरे को मारेगा, ये उसको मन में कहीं ना कहीं निश्चय है। चलो, मात्रं पितृन् पित्रं भ्रातृन् सर्वान् स्वीरस्तथा घनन्ति असु त्रिपु लुब्धा राजान प्रायसो भूई। अब जो है ना, ये बता रहे हैं सुखदेव जी महाराज परीक्षित को, प्राया करके जो राजा होते हैं असु त्रिप, असु माने, असु किसको बोलते हैं? प्राणों के लिए। जो केवल शरीर से प्रेम करने वाले होते हैं राजा लोग, वो क्या करते हैं? मातरम पितृम पित्रम भ्रातृन, आप देख लो भागवत यदि आप बहुत ध्यान से पढ़ोगे, जिस ताजमहल को देखने के लिए सब लोग जाते हैं, मैं तो मथुरा में कुछ दिन रहा हूं लेकिन मेरे मन में कभी इच्छा नहीं हुई उसको देखने की। आप लोग प्रेमी होंगे उसके, लेकिन अपने मन में कभी इच्छा नहीं, मैं कभी गया नहीं उसमें, दिल नहीं कहा। जिस आदमी ने उसको बनाया उसके पुत्र ने उसके साथ में क्या व्यवहार किया? भागवत में क्या गलत लिखता है? असुतृप, जो व्यक्ति प्राणों से और शरीरों से बहुत ज्यादा प्रेम करता है वो व्यक्ति मातरम पितरम भ्रातृन इनके साथ में भयंकर क्रूर व्यवहार करता है। कहते हैं जिसने बनाया ना उसको मालूम होगा, आपको सुना इतिहास तो पढ़ा होगा, उसी को जेल खाने में डाल दिया था। हाँ, और खाने के लिए भाई तो उसने मारी दिए थे अपने सब। इसलिए लोभी राजा का वर्णन करते हैं, जब आदमी के अंदर लोभ भयंकर हो जाता है ना तो फिर स्थिति भयंकर हो जाती है। आपको कभी बताते हैं कि काम क्रोध लोभ जो है ना, ये संसार की व्यवस्था को व्यवस्थित करते हैं, लेकिन संसार की व्यवस्था काम क्रोध और लोभ से चलती है। आप ध्यान रखना इसको। काम जो है संतति का मूल है, लोभ संपत्ति का मूल है, और क्रोध जो है वो आदमी गलत कर रहा है, गलत करते समय उसकी उससे निवृत्त हो इसलिए व्यक्ति को क्रोध करना पड़ता है। लेकिन ऐसा बताते हैं कि काम क्रोध जब तक एक मर्यादा के अंदर रहते हैं तब तक तो ये आदमी के विकास के कारण है, और जब ये मर्यादा के बाहर हो जाते हैं तब ये आदमी के विनाश के कारण बन जाते हैं। तो मर्यादा के अंदर हो तो विकास के कारण, और मर्यादा के बाहर हो तो, इसलिए यहां इन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात बता दी। जो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि कंस राजा है लेकिन औरंगजेब के समान राजा है, जो भाई को भी मार देता है और पिता को भी उसने जेल खाने में डाल दिया। तो विचार करके देख लो, कंस ने तब डाला और औरंगजेब ने अब डाला। असुत्रपय। और नारद जी के जाने के बाद भागवत में आपने सुना ही होगा, जो श्लोक ये पढ़े होंगे, तो कंस को एक ज्ञान हो गया। यहां लिखते हैं 68 नंबर के श्लोक के अंदर क्या लिखते हैं देखो, आत्मानम इय संजातम जानन प्राग विष्णुना हतम महासुरम कालनेमिम यदुभि सव्यरुध्यता। कंस को एक ज्ञान हो गया। क्या ज्ञान हुआ? कि प्राक विष्णुना हतम, पिछले जन्म में मेरे को विष्णु ने मारा था। ये ऋषि का अर्थ ही होता है जो आदमी को ज्ञान प्रदान करे। ज्ञान होना चाहिए। अब आपको बता दिया ये जहर है, अब तुम्हारे को खाना है तो खाओ। ये अमृत है, तुमको पीना है तो पियो, ये तुम्हारे ऊपर है फिर। लेकिन ऋषि के जाने के, वो क्या कहते हैं, प्राक पिछले जन्म में विष्णुना हतम, विष्णु ने मुझे मारा। मां असुरम काल नेमिम, पिछले जन्म में मैं महाअसुर काल नेमी था। ये किसको ज्ञान हो गया? कंस को। हाँ, मूल भागवत में लिखा है काल नेम ये संजाता आत्मानम, और अब मैं जो है वही काल नेमी, अब मैं मथुरा में उत्पन्न हो गया हूं। ये संजातम, मैंने यहां मथुरा में उत्पन्न हो गया। तो उसको पिछले जन्म की स्मृति आ गई। अब ये दो चीजें हैं, यदि उसको भगवान के महात्म्य का बोध हो जाता तो भगवान की शरणागति भी स्वीकार कर सकता है। यदि विवेक होता तो शरणागति स्वीकार करने के लिए इतना ही प्राप्त है, क्योंकि भागवतकार कहते हैं कि भयंकर बलशाली असुर था कालनेमी, और फिर भी भगवान विष्णु ने उसको मार दिया, और वो बोल रहा है कि वही कालनेमी मैं हूं। अब शरणागति जा सकता है या तो बैर ठान सकता है, तो विवेक होता तो शरणागत चला जाता, और विवेक न होने के कारण भगवान के प्रति उसकी और बैर बुद्धि बढ़ गई, ऐसा बता दिया। यदुवी सब विरुद्धता, और फिर उसने क्या किया, उग्रसेनम च पितरम यदु भोजांधका दीपम स्वयं निगृह्य बुभुजे सूरसेनान महाबलः। इस प्रकार से उसने अपने पिता को भी कैद कर दिया, और कैद करने के बाद उनको जेल में डाल दिया और स्वयं राजा बन बैठा। चलो और क्या करता है वो आगे चल करके, प्रलंब बक चारुण तृणावर्त महासन ही मुष्टिक अरिष्ट द्विविध पूतना केसु धेनिक धेनु कहा। ये जितने हैं इतने असुरों का साथ लेकर के उसने, और किस किस का साथ लिया, असुर भूपाल बाणासुर भौमासुर आदि सबका साथ लेकर के उसने यदुवंशियों को परेशान करना शुरू कर दिया। संक्षिप्त में इसमें ज्यादा बात नहीं है, इसलिए ये बता रहा हूं आपको। ये के तम अनुरुंधान ज्ञातया पर्युपासते हतेषु षट्सु बालेषु देवक्या अग्रसेनिनः। अग्रसेन मैंने कंस। इस प्रकार कंस ने देवकी के छह पुत्रों को मार दिया। छह पुत्रों को मारने के बाद अब यहां पर जरा माया का महात्म्य आ गया, माया का महत्व आ गया। अब क्या माया का महत्व समझ लो। सप्तमो वैष्णवम धाम यमनंतम प्रचक्षते गर्भो बभूव देवक्या हर्ष शोक विवर्धना। उसके बाद माता देवकी के गर्भ में सप्तम आए। सप्तम कौन है वो, यहां पर लिख दिया वैष्णवम धाम, विष्णु भगवान का धाम, और धाम का अर्थ अंश भी किया है, ऐसा अंश विष्णु भगवान का साक्षात अंश भी किया है, और धाम का अर्थ कहते हैं जिसके ऊपर भगवान विष्णु रहते हैं, वो भी धाम हो गया। वो भगवान की सेवा करने के लिए पहले देवकी के गर्भ में आ गए। जब देवकी के गर्भ में वो आते हैं तो क्या होता है, हर्ष शोक विवर्धना। देवकी को कभी खुशी होती है और कभी शोक होता है। जब कंस का स्मरण आता है तो शोक छा जाता है, क्योंकि वो कदरीय व्यक्ति है, अभिजित आत्म व्यक्ति है, वो कभी कुछ भी कर सकता है। तो कंस का स्मरण आता है तो पूरे जीवन में देवकी के शोक छा जाता है, और जब भगवान का स्मरण आता है तो प्रसन्नता आती है। ये जीवन का एक पहलू है, जीवन में कभी हर्ष होता है और कभी जीवन में शोक होता है। देवकी सबका प्रतीक है, लेकिन जब तुम्हारे हर्ष और शोक को भगवान जानता है तब साधना पूर्ण होने लगती है, और ये तभी संभव है जब सतत परमात्मा का चिंतन होता रहे, तब आपका हर्ष और शोक से परमात्मा, देखो परमात्मा चाहे आप भजन करो या न करो, आपके हर्ष और शोक से परमात्मा विज्ञ है, लेकिन जो भजन करता है उसके हर्ष को बढ़ाने के लिए और शोक को निवृत्त करने के लिए परमात्मा स्वयं उद्यम करता है। जो भजन करेगा उसके हर्ष को बढ़ाने के लिए और शोक को निवृत्त करने के लिए परमात्मा स्वयं उद्यम करता है। अब देखो जो हम देवी की पूजा करते हैं, अब देवी की पूजा का विधान भागवत के अंदर है, मूल भाग दशम स्कंद के दूसरा अध्याय प्रारंभ हुआ, यहां लिखते हैं जब भगवान ने देवकी के चेहरे को देखा तो क्या देखते हैं, देखो भगवान अपि विश्वात्मा विदित्वा कंसजम भयम यदूनाम निज नाथानाम योग मायाम सम आदिशत। भगवान ने निज नाथा नाम, मैंने निज नाथा नाम मैंने अपने को नाथ मानने वाले अपने आश्रित, भगवान ने भगवान के जो आश्रित हैं उनको कंस का भय देखा। तो भगवान के सबसे ज्यादा आश्रित कौन है? वसुदेव और देवकी। हाँ, कबीर ने लिखा है, दुख में सुमिरण सब करें, सुख में करे न कोई, जो सुख सुमिरण में करे दुख। तो भयंकर जब व्यक्ति दुख में होता है उस समय भगवान का स्मरण करता है। तो यदु नाम निज नाथा नाम, जो भगवान को अपना नाथ मानते हैं और स्वयं को अनाथ मानते हैं, कंसजम भयम विदित्वा, भगवान ने देखा इनको इस समय कंस से भयंकर भय है। आचार्य लिखते हैं ईश्वर जो होता है ना, ईश्वर, ईश्वर को प्रत्येक वस्तु हाथ में रखी हुई वस्तु के समान सब स्पष्ट दिखाई देता है, अतीत वर्तमान और भविष्य स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, लेकिन जीव को सब स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देता। जीव तो अनहोनी की होने की आशंका से दुखी हो जाता है। ये दुखी हो गया, विदित्वा, जब भगवान ने जाना ये बहुत दुखी हो गए। भगवान अपि योग मायाम सम आदिशत, भगवान ने क्या किया, सम बोलते हैं संस्कृत में समझाकर, भगवान ने पहले समझाया और समझाने के बाद आदेश दिया। आप लोग क्या करते हो, ऐसे ही आदेश दे देते हो, तो वो जो आदमी है उल्टा सुल्टा काम करके आ जाता है, फिर बाद में उसको भी गाली देते हो, गुस्सा करते हो। तो यहां सीखो भागवत से, पहले समझाओ और फिर कुछ करने का आदेश दो। तो पहले भगवान ने योग माया को समझाया और समझाने के बाद भगवान ने उसको आदेश दिया, किसको, योग माया को। क्या आदेश देते हैं देखो, गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गो गोप गोभि अलंकृतम रोहिणी वसुदेवस्य भार्यास्ते नंद गोकुले अन्यास्य कंस संविघ्न विवरेषु बसंती। कई जो है वो कंस के भय से विवर बोलते हैं गुफाओं के लिए, गुफाओं में रहते हैं, लेकिन एक रोहिणी नाम की स्त्री है, किसकी, वसुदेव की, वसुदेव की है। उसका क्या करो, देवक्या जठरे गर्वम शेषाख्यम धाम मामकम तत्सन्निकृष्य रोहिण्या उदरे सन्निवेशयस। अब तुम ऐसा करो, देवकी के गर्भ में, इसलिए माया बोलते, ये जो ये सब प्रश्नों के उत्तर हैं, यदि थोड़ी बहुत आपने पहले दूसरे दिन कथा सुनी होगी तो कुछ लगेगा, समझ में आएगा कि जो देवकी के गर्भ में है कौन, हाँ शेषनाग जी, उनको तुम वहां से सन्निकर्ष करके और कहां ले जाओ, रोहिणी के गर्भ में ले जाओ। इसका नाम है अघटित घटना पटयसी माया, जो घटना घट नहीं सकती उस घटना को चुटकी मार के जो घटा करके दिखा दे उसी का नाम क्या है, माया है। ये परमात्मा की, परमात्मा का काम करती है और परमात्मा का काम करने से आदमी को बड़ा लाभ होता है। क्या बोलते हैं देख लो आगे, निवेशया रोहिणी के गर्भ में ले जाओ। अथाम अंश भागेन देवक्या पुत्रताम सुवे प्रापयिष्यामि त्वं यशोदायाम नंद पत्न्या भविष्यति। तुम तो नंद की पत्नी के यहां पैदा होगी और मैं देवकी के गर्भ में से पैदा होऊंगा, ये भगवान ने बताया। लेकिन अब माया से क्योंकि भगवान कभी किसी का उपकार रखते नहीं, भगवान का स्वभाव प्रकृति के समान है। आपको बताते हैं कभी, जैसे एक दाना आप धरती में बोते हैं गेहूं का, लेकिन धरती कितने दाने वापस करके लौटाती है, अनेकों हजारों दाने वापस करके लौटाती है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं क्या होगा, देखो आगे का श्लोक पढ़ लीजिए थोड़ा सा, अर्चयिष्यन्ति मनुष्यास्त्वं सर्व काम बरेश्वरीं धूप उपहार बलि भी सर्व काम वर प्रदान। कलयुग में मनुष्य की संपूर्ण कामनाओं को आप पूर्ण करने वाली होंगी। सर्व काम वर प्रदान, मनुष्य की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली आप होंगी। और कैसे? धूप उपहार के द्वारा जो तुम्हारी अर्चय शंती जो तुम्हारी पूजा करेंगे। और नाम क्या होगा आपका? सुन लीजिए प्रभु, नामधेयानि कुर्वन्ति स्थानानि नरा भुवि दुर्गा भद्रकाली इति विजया वैष्णवी इति। ये दुर्गा और भद्रकाली, विजया और वैष्णवी, ये भगवती के नाम होंगे। और कलयुग में केवल आपकी पूजा करने से ही मनुष्य की मनोकामना पूर्ण होगी, क्योंकि वो जो पूरी करे, पूरा तो परमात्मा ही करेगा, लेकिन वो माया, क्योंकि ये सारा आधिपत्य जितना है, ये सब, ये जो प्रकृति है, भगवान ने गीता में कहा, भूमि आपो अनलो वायो खम मनो बुद्धि रेवचा इत्ययम् मे भिन्ना प्रकृति अष्टदा। इसका जो यथार्थ स्वरूप है, वो यथार्थ स्वरूप जो है योग माया है। तो जितने भी मनुष्य, इसलिए तो बोलते हैं बड़े बड़े जो योग ऋषि हैं, वो ब्रह्म विद्या की उपासना करते हैं। ब्रह्म विद्या क्या चीज है? यही योग माया ब्रह्म विद्या है। योग माया जो सामान्य व्यक्ति उसकी पूजा करता है, उसकी कामना पूर्ति करती है, तो कामना बहुत बड़े बड़े महापुरुष, अभी नाम किसका लूं मैं, बड़े बड़े जो महापुरुष होते हैं वो भगवती शारदा की उपासना करते हैं। तो भगवती शारदा की उपासना करते हैं, वो शारदा कौन है? वही माया है। तो वो मनुष्य की भौतिक कामनाओं की भी पूर्ति करते हैं, और जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करना चाहते हैं उनकी कामना भी पूरी करते हैं। इस प्रकार से ये नाम बता दिए उनके, कुमुदा चंडिका कृष्णा माधवी कन्नकेति चा माया नारायणी ईशानी। और मूल नाम हो गया उसका नारायणी और ईशानी। नारायणी समझते हैं और ईशानी सबके ऊपर अनुशासन करने वाली। इस प्रकार से भगवान ने उस भगवती को आज्ञा दी। यहां तक माया के जन्म की व्यवस्था हो गई। और जो हम कलयुग में देवी आदि की, जहां वैष्णव देवी जाते हैं, जहां भी जाते हैं, जो पूजन करते हैं, उसका विधान भागवत में ही स्वयं कर दिया भगवान ने। क्योंकि कलयुग में जो मनुष्य, भगवान ने गीता में कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम, इसलिए देवी के लिखा है कले चंडी विनायक हो, चंडी विनायक हो, इसका अर्थ यही हो गया, क्योंकि ये तो स्वयं भागवत के द्वारा प्रतिपाद्य है। इस प्रकार से ये दूसरे अध्याय के 12 श्लोक हो गए, और कल तो आखिरी दिन है, इसलिए मैंने सोचा है आगे के श्लोक तो फिर अगले साल करेंगे, लेकिन आज तक जो किया है, आज का प्रसंग छोड़ करके जो 8 दिन किया है, कल वो 8 दिन का सारांश थोड़ा आपको बताऊंगा, जो महत्वपूर्ण श्लोक हैं उसका सारांश थोड़ा आपको कल बताऊंगा।